السلام علیکم. یہ پارٹ ون ہے ناول دلہن کا فرار. یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. آواز کنول خلیل, پیشکش محمد اظہر. مزید کتب کی ریکارڈنگ کے لیے رابطہ کریں 03002919600. مصنف اے حمید. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ ون. اسے پتھر کے درمیان ایک گول بڑا پائپ آگے کو جاتا نظر آیا. وہ پائپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا جہاں پائپ ختم ہو کر باہر کو جاتا تھا. وہاں ایک چھوٹا سا جنگلہ لگا ہوا تھا. ندیم نے اسے پکڑ کر زور سے اپنی طرف کھینچا. جنگلہ لوہے کا تھا اور اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلا. ندیم سوچنے لگا کہ نظر نے تو کہا تھا یہاں سے ایک کھلا راستہ باہر جاتا ہے. پھر سوچا کہ ایک کھلا راستہ کیسے ہو سکتا ہے. یقیناً اس کی مراد اس جنگلے ہی سے تھی. اسے جنگلے کو کسی طرح توڑنا ہوگا. وہاں پتھر ضرور پڑے تھے مگر ندیم پتھر سے ضرب نہیں لگا سکتا تھا. اس کی آواز پر سنتری چوکنے ہو کر وہاں آ سکتے تھے. ندیم ان پتھروں کو ہلانے کی کوشش کرنے لگا جن میں آہنی جنگلہ لگا تھا. یہاں ایک پتھر اپنی جگہ سے ہلا ہوا تھا. ندیم نے اس پر اپنا سارا زور صرف کر دیا اور تھوڑی سی کوشش کے بعد پتھر باہر نکل آیا. اب دوسرے پتھر کا اکھاڑنا مشکل نہیں تھا. تین چار پتھر نکالنے کے بعد جنگلہ اپنی جگہ سے ہل گیا. ندیم نے اسے ایک طرف کو پاؤں کے زور سے موڑ دیا. جب وہاں ایک آدمی کے گزرنے کی جگہ پیدا ہو گئی تو ندیم اس میں سے نکل کر اندھیرے میں دوسری طرف آ گیا. دوسری طرف بھی سیمنٹ کا پائپ آگے جا رہا تھا. یہاں پہلی بار اسے جنگل کی ٹھنڈی ہوا محسوس ہوئی. وہ جیل کی زمین دوز دیوار میں سے باہر نکل آیا تھا. اس کے ارد گرد جنگلی جھاڑیوں کی بھرمار تھی. پائپ ان کے بیچ میں سے گزرتا تھا. ندیم جھاڑیوں کے باہر آ کر بیٹھ گیا اور اندھیرے میں آنکھیں کھول کر تکنے لگا. نظر نے اسی جگہ آنے کو کہا تھا. وہ سانس رو کے کالی سیاہ جھاڑیوں کی اوٹ میں دبکا بیٹھا تھا. اتنے میں پتوں پر سے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی. ندیم نے چونک کر پیچھے دیکھا. اندھیرے میں اس نے نظر بابا کو پہچان لیا تھا. نظر نے آہستہ سے کہا جلدی سے میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ اور وہ آگے آگے چل پڑا. یہ کسی ٹیلے کی ڈھلان تھی اور وہاں گپ اندھیرا تھا. ندیم نے نظر کو اس اندھیرے میں بھی اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا اور اس کے پیچھے پیچھے چلتا گیا. ڈھلان سے اترنے کے بعد ایک ہموار جگہ آ گئی. پھر درختوں میں چڑھائی تھی. اس چڑھائی کے بعد ایک گھاٹی آ گئی. نظر گھاٹی میں اتر گیا. اس گھاٹی میں برساتی نالا تھا جو خشک تھا. جب برسات ہوتی تھی تو نالا بھر جاتا تھا. بارش کے ختم ہونے کے چند دنوں بعد ہی نالا بالکل خشک ہو جاتا تھا. اس کا سارا پانی سمندر کی طرف بہ جاتا تھا. یہ دونوں اندھیرے میں خشک نالے میں جنوب کی طرف چلتے گئے. کافی دیر چلنے کے بعد سیاہ کالی چٹانوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہ چٹانیں ختم ہوئی تو سامنے ایک پہاڑی کھڑی تھی. وہ پہاڑی کے دامن میں اس کی دوسری جانب آ گئے. یہاں آ کر نظر ندیم کو جھاڑیاں ادھر ادھر ہٹا کر ایک سرنگ میں لے گیا جس کی چھت اتنی اونچی تھی کہ انہیں جھک کر اس میں داخل ہونا پڑا. نظر نے کہا یہاں تم اس وقت تک چھپے رہو گے جب تک کہ کرشنا جہاز انڈیمان سے ہندوستان کے لیے روانہ نہیں ہوتا. میں تمہیں اس میں سوار کرنے کی کوشش کروں گا. ایک ترکیب میرے ذہن میں ہے. ندیم اندھیرے میں غار میں بیٹھ گیا. اس نے کہا نظر چچا میرے فرار ہونے سے تم پر تو کوئی مصیبت نہیں آئے گی. وہ بولا میری بات تم چھوڑو. میرا کام گنتی کی آواز لگانا ہے. میں نے گنتی پوری کر دی تھی. مجھے کوئی نہیں پوچھے گا. ہاں سنتری سکنا لال ضرور معطل ہوگا. مجھے معلوم تھا آج شور اتری ہے اور یہ لوگ اوپر والے آفس میں रात को उधम मचाएंगे। अब मैं जाता हूँ, मेरा ज्यादा देर यहाँ रहना ठीक नहीं। मैं कल किसी वक्त आकर तुम्हें खाने को रोटी चावल दे जाऊंगा। नदीम ने जब इस खदशे का इजहार किया कि जेल के लोग इसकी तलाश में इधर तो नहीं आएंगे, तो नजर बोला, इसकी तुम फिक्र ना करो, मैं इन्हें गलत रास्ते पर डाल दूंगा, इस तरफ नहीं आने दूंगा। अगर आ गए तो तुम्हारी किस्मत पर तुम जानो और तुम्हारी किस्मत। मैंने एक सच्चे मुसलमान के नाते तुम्हारी मदद की है। तुम मुसलमान हो, बेगुनाह हो और पाकिस्तानी हो। तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। अब मैं जाता हूँ। हाँ, दिन की रोशनी में इस गार से हरगिज बाहर मत निकलना। रात को भी निकलूं तो झाड़ियाँ गार के मुंह पर डाल दिया करना। अल्लाह तुम्हारा निगेबान हो। गार के अंधेरे में नजर का साया बाहर निकल गया। नदीम ने इसके जाने के बाद गार का जायजा लिया। इसे दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा था। हाथ से दीवारों को टटोल कर देखा। पथरीली दीवार थी जिसमें कहीं कहीं से खुश्क घास बाहर को निकली हुई थी। वहाँ मच्छर भी थे, मगर नदीम को सबसे ज्यादा डर सांप बिच्छू का था। लेकिन आजादी के एहसास ने इस खौफ को भी काफी हद तक जाहिर कर दिया था। जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। किसी वक्त किसी दरिंदे की अजीब सी आवाज गूंज जाती थी। ये आवाज भेड़िए की आवाज से काफी मुशाबहत रखती थी। इस किस्म की आवाजें इसी जेल की कोठरी में भी आया करती थी। नदीम ने बाकी सारी रात आंखों में काट दी। सुबह की हल्की हल्की स्लेटी रंग की रोशनी गार में आने लगी तो वो उठकर गार के मुंह पर आकर बैठ गया। सामने जंगली झाड़ियां थी। इसने झाड़ियों को एक तरफ हटाकर देखा। इसके सामने ऊंची नीची जमीन पर घने दरख्तों, ऊंची घास और झाड़ियों का सिलसिला दूर पहाड़ी तक फैला हुआ था। ये इस कदर दुश्वार गुजार इलाका था कि लगता था इधर कभी कोई नहीं आया। हवा में सब्जे की महक रची हुई थी। नदीम उठकर गार में वापस आ गया। इसके पास सिगरेट भी नहीं थे जिनको फूंक कर वो वक्त गुजार लेता। गार की जमीन रतीली थी और इसका रंग सुर्खी मायल था। जेल का सायरन रात को नहीं बजा था, लेकिन नदीम को यकीन था कि अब तक इसकी फरार का पता चल गया होगा। काले पानी की जेल में ज्यादा कैदी नहीं थे, इसलिए वहां सायरन नहीं बजाया गया था। लेकिन जैसा कि बाद में नजर चचा ने इसे बताया, इसके फरार का इल्म रात 2 बजे इसी वक्त हो गया था, जब संतरी नशे में मदहोश वहां आया और इसको कोठरी का दरवाजा खुला हुआ मिला। संतरी सिकन्ना लाल को हिरासत में ले लिया गया था और काले पानी की पुलिस और फौज ने मिलकर जंगल में इसकी तलाश शुरू कर दी थी। गार में दिन के वक्त ही हफ्स और मच्छर बराबर नदीम को तंग कर रहे थे। इन्हें भगाने के लिए वो धुनी भी नहीं लगा सकता था। नदीम को प्यास लग रही थी, मगर वो पानी पीने गार से निकलकर जंगल में नहीं जा सकता था। नजर चचा ने इसे मना किया था। दोपहर के करीब नजर चचा आ गया। वो नदीम के लिए डबल रोटी, अचार और पानी से भरा हुआ छोटा मशकीजा साथ लाया था। नदीम ने सबसे पहले पानी पिया। नजर ने इसे बताया कि इसे जगह जगह तलाश किया जा रहा है। जेल में नजर चचा की बड़ी इज्जत की जाती थी। ना सिर्फ ये कि इसने जिंदगी के 30 वर्ष वहाँ नौकरी करते गुजार दिए थे, बल्कि वो एक दयानतदार और फर्शनाश मुलाजिम था। चनानचा इसने जेल के सुपरिटेंडेंट को ये मशवरा दिया कि कैदी यकीनी तौर पर इस जजीरे से निकलकर इंदिमान के दूसरे किसी जजीरे में जा छुपा है। वो इस जजीरे में ठहरने का खतरा मोल नहीं ले सकता। इंदिमान के सैकड़ों छोटे छोटे जजीरे हैं। ये उसने जेल के हकाम और पुलिस को गलत रास्ते पर डाल दिया था। इन जजीरों को खंगालने तक काफी वक्त गुजर जाता और इस दौरान नजर चचा नदीम को वहां से निकालकर जहाज में सवार करा देता। अब नजर ने नदीम को वो स्कीम बताई जिस पर अमल करते हुए नदीम को कृष्णा जहाज के जरिए वापस हिंदुस्तान जाना था। हिंदुस्तान वापस जाने का फैसला नदीम ने इसलिए किया था कि अंडमान से इन दिनों बहरी जहाज सिर्फ हिंदुस्तान को ही जाते थे, कोलंबो या इंडोनेशिया की जानिब कोई जहाज नहीं जाता था। वैसे भी नदीम हिंदुस्तान ने नजमी को साथ लिए बगैर पाकिस्तान नहीं जा सकता था। जब नजर चचा ने नदीम को स्कीम बताई तो एक बार तो नदीम के जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। इसे यूं लगा जैसे इसे कब्र में बंद करने की तैयारियां हो रही हों। स्कीम ये थी, हिंदुस्तान से जो बहरी जहाज आते थे वो मिट्टी का तेल, नमक, दालें और दूसरी चीजें लाते थे। यहाँ से वापस जाते हुए काली मिर्च, इलायची और मकामी कारीगरों के बनाए हुए नारियल की लकड़ी के नवाद, छोटे छोटे बुत, एश ट्रे, पानदान, सजावट की चीजें और कुछ सन की टेकोरियां वगैरह अपने साथ ले जाते थे। इलायची और काली मिर्चें तो बोरियों में भरी जाती थीं, लेकिन नवादरात लकड़ी के बड़े बड़े बॉक्सों में पैक करके भेजी जाती थी। कुछ सन की नवादरात की बरामद का काम नजर चचा का एक रिश्तेदार करता था। ये माल नजर के मकान के एक गोदाम में लकड़ी के बड़े बड़े क्रेटों में भरा जाता था। नजर चचा ने नदीम को बताया कि इसे नवादरात के एक क्रेट में लिटाकर कृष्णा बहरी जहाज में लाद दिया जाएगा। कलकत्ते की बंदरगाह पर ये माल एक बहुत बड़े गोदाम में रखवा दिया जाता है, जहाँ से वहाँ का एक मारवाड़ी सेठ आकर इसे छुड़ा कर ले जाता है और अपने गोदाम में रखवा देता है। नजर ने कहा, इस मारवाड़ी सेठ के गोदाम में पहुँचने के बाद तुम लकड़ी के क्रेट को खोलकर बाहर निकल आओगे। इस गोदाम से बाहर निकलना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, क्या ख्याल है? तुम इसके लिए तैयार हो? ये जहन में रखना कि इसके सिवा तुम्हारे लिए यहाँ से निकलने का और कोई तरीके का नहीं है। नदीम ने नजर की स्कीम को बड़े गौर से सुना था। ख्याल ही ख्याल में इसने अपने आप को लकड़ी के बॉक्स में बंद पाया तो इसका दम घुटने लगा। इसने माथे पर आया हुआ पसीना पोंछकर कहा, चचा लकड़ी के बॉक्स में मुझे हवा कहाँ से आएगी? नजर बोला, इसका बंदोबस्त कर दिया जाएगा। लकड़ी के बॉक्स में सुराख कर दूंगा जिनमें से तुम्हें ताजा हवा आती रहेगी। नदीम ने पूछा, अगर मेरे बॉक्स के ऊपर दूसरे क्रेट रख दिए गए तो मुझे हवा कहाँ से आएगी? नजर चचा ने कहा, मैं अपने रिश्तेदार के साथ बंदरगाह पर जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि तुम्हारे क्रेट के ऊपर कोई दूसरा क्रेट ना रखा जाए, बल्कि सबसे ऊपर तुम्हारा क्रेट हो। वैसे इतना खतरा तो तुम्हें मोल लेना ही होगा, ये तुम्हारी जिंदगी और मौत का सवाल है। इसके अलावा क्रेट के पहलुओं में भी तुम्हारे मुँह के करीब सुराख होंगे, तुम्हें वहाँ से भी हवा मिलती रहेगी। नदीम ने जिंदगी और आजादी के लिए मौत के मुंह से गुजरने का फैसला कर लिया। इसने कहा कि मैं तैयार हूँ। नजर चचा ने नदीम की बहादुरी की तारीफ की और एक बार फिर ताकीद करते हुए कहा, ये बात याद रखना, अगर तुम किसी वक्त भी पकड़े जाओ तो मेरा नाम मत लेना। नदीम ने इसे यकीन दिलाया कि वो तशद्दुद सहते सहते मर जाएगा, मगर इसका नाम जबान पर नहीं लाएगा। नजर चचा दूसरे रोज रात को आने का वादा करके चला गया। यूं ही नदीम ने इस गार में 2 हफ्ते गुजार दिए। कृष्णा जहाज के आने में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया था कि एक रोज शाम से पहले इसे जंगल में कुछ इंसानी आवाजें सुनाई दी। आवाजें करीबी आती मालूम हो रही थी। क्या पुलिस के आदमी इधर आ रहे हैं? इस ख्याल से ही नदीम को पसीना आ गया। वो गार से निकलकर झाड़लों की ओट में आ गया और शाखों को एक तरफ हटाकर दरख्तों की तरफ निगाह दौड़ाई। इसे दरख्तों के नीचे झाड़ियों के ऊपर इंसानी सर दिखाई दिए। ये 6-7 आदमी थे, लेकिन इनमें से किसी ने भी पुलिस या फौज की वर्दी नहीं पहन रखी थी। पुलिस और फौज की टोपियों को नदीम दूर ही से पहचान लेता था, लेकिन ये इंटेलिजेंस के आदमी भी हो सकते थे। नदीम ने सोच लिया कि अगर वो इस तरफ आए तो वहाँ से भाग जाएगा। लेकिन इनकी आवाजें दूर होने लगी, इंसानी सर भी झाड़ियों के पीछे गायब हो गए, फिर आवाजें भी खत्म हो गईं। नदीम ने इत्मीनान का सांस लिया, मगर अब इसे गार में भी बेचैनी लग रही, कहीं ये लोग ऊपर से होकर गार में ना आ जाएं। जाहिर है इनके पास असला होगा और नदीम इनका मुकाबला ना कर सकेगा, लेकिन खैरियत ही रही और इन लोगों की आवाजें फिर सुनाई ना दी। सूरज गुरूब हो गया, दरख्तों पर परिंदों का शोर गूंज उठा, फिर रात का अंधेरा छा गया और सब आवाजें खामोश हो गईं। नदीम एहतियात के तौर पर गार के अंदर रहने की बजाय गार के मुंह के करीब एक घनी झाड़ी की ओट में बैठ गया, जहाँ से वो जंगल में दाएं बाएं और सामने निगाह डाल सकता था। जब रात गहरी हो गई, तो इसे फिजा में मखसूस सीटी की आवाज सुनाई दी। नजर अंदर आने से पहले एक परिंदे की तरह हल्की सी सीटी बजा देता था, जिससे नदीम समझ जाता कि नजर चच्चा आ रहा है। सीटी की आवाज सुनते ही नदीम लपक कर गार के अंदर आ गया। थोड़ी देर बाद नजर चच्चा गार में दाखिल हुआ। वो रोटियां, अचार और पानी का मशकीजा साथ लाया था। जब नदीम ने इसे बताया कि आज वहाँ से कुछ आदमी गुजरे थे, तो नजर के कान खड़े हो गए। वो कुछ सोचने लगा, फिर सर उठाकर बोला, बेटा तुम्हें आज रात ही मेरे साथ गोदाम में चलना होगा। कृष्णा जहाज बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो चुका है, वो 3 दिन बाद इंदिमान से रवाना होगा। मेरा ख्याल था कि मैं तुम्हें कल यहाँ से ले जाऊंगा, मगर लगता है इस जंगल में भी तुम्हारी खोज शुरू हो गई है, इसलिए बेहतर है कि तुम आज ही मेरे साथ यहाँ से निकल चलो। नदीम ने अचार के साथ रोटी खाई, जी भरकर पानी पिया। नजर चच्चा कहने लगा, तुम इसी जगह ठहरो, मैं बाहर जाकर देखूं। वो गार से निकल गया, कुछ देर बाद वापस आया और कहने लगा, चलो सब ठीक है, मेरे पीछे पीछे चलना, शहर की आबादी शुरू हो तो मुझसे कुछ फासले पर हो जाना। नदीम ने जंगल में नजर के अकब में चढ़ना शुरू कर दिया। अंधेरे में दोनों देर तक चलते रहे। उन्होंने जंगल का सारा इलाका उबूर कर लिया तो ढलान से उतरते हुए फासले पर नदीम को मकानों की टिमटिमाती हुई रोशनियां नजर आने लगी। नजर आगे आगे था, वो इसे आबादी से कुछ फासले पर जुनूब की तरफ एक बस्ती के सिरे पर ले गया। यहाँ रोशनी कहीं कहीं थी। नजर रुक गया और बोला, अब तुम मेरे और अपने दरमियान कुछ फासला रख लो। गोदाम मेरे मकान के अकब में है और मेरा मकान सामने वाली बस्ती के कोने में है, आ जाओ। नजर चला तो नदीम रुका रहा। जब वो इससे 10-15 कदम दूर हो गया तो नदीम भी इसके पीछे चल पड़ा। आखिर वो एक मकान के अहाते में दाखिल हो गए। आगे गोदाम का लकड़ी का बरामदा था। दालान में नारियल के दरख्त अंधेरे में अपने भूतों ऐसे सर उठाए खड़े थे। नजर नदीम को एक गोदाम में ले गया, जिसके अंदर लकड़ी के खोके और दूसरा सामान बिखरा पड़ा था। छत के साथ धीमी रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। नजर बोला, यही वो गोदाम है जहाँ लकड़ी के खोकों में हिंदुस्तान जाने वाला सामान भर कर लाया जाता है, या इन खोकों पर कंपनी के पत्ते लिखे जाते हैं। मैंने अपने रिश्तेदार से तुम्हारे बारे में सारी बात कर ली है, तुम परेशान मत होना, वो भी मेरी तरह पाकिस्तान का सच्चा आशिक है, वो बड़ी खुशी से तुम्हें खोके में बंद करके हिंदुस्तान पहुंचाने पर तैयार हो गया है। क्योंकि ये इनकी साख का मामला है, इसलिए वो तुमसे सिर्फ ये चाहता है कि जब तुम कलकत्ता में सेठ के गोदाम से बाहर निकलो, तो इससे पहले इस खोके में आग लगा देना जिसमें बंद होकर तुमने सफर किया था। नदीम ने कहा, मैं आग जरूर लगा दूंगा, लेकिन इतनी जल्दी इसे आग लग जाएगी। इस पर नजर ने इसे बताया कि माचिस और मिट्टी के तेल की एक बोतल इसके साथ रख दी जाएगी। नजर कह रहा था, ये महज इसलिए है कि अगर सेठ को इल्म हो गया कि एक खोके में माल आधे से भी कम था, तो मेरे रिश्तेदार की साख को नुकसान पहुंचेगा। नदीम ने कहा, चचा अगर मैं खैरियत से कलकत्ता पहुंच गया और सेठ के गोदाम में पहुंचकर खोखे से बाहर भी निकल आया तो यकीन करो मैं इसके सारे गोदाम को आग लगाकर ही गोदाम से बाहर निकलूंगा। नजर बोला, सारे गोदाम को आग लगाने की जरूरत नहीं है बेटा, तुम सिर्फ वही खोखा जला देना जिसमें बंद होकर तुम जाओगे। अच्छा अब तुम यहाँ कहीं लेटकर आराम करो, मैं सुबह आऊंगा। साथ ही मेरा मकान है जहाँ मेरे बीवी बच्चे रहते हैं, तुम आवाज बिल्कुल ना निकालना। नजर चला गया। दूसरे दिन वो सुबह सुबह एक पुराना सा थर्मोस लेकर आ गया, इसमें गरम गरम चाय थी, साथ वो डबल रोटी के टुकड़े भी लाया था। नदीम ने बड़े मजे से चाय पी। कितने दिनों के बाद चाय नसीब हुई थी। नजर कहने लगा, आज शाम को माल के खोके इस गोदाम में आकर लगा दिए जाएंगे। इस वक्त मैं तुम्हें दूसरी कोठरी में छुपा दूंगा क्योंकि मेरे रिश्तेदार के साथ मजदूर भी होंगे। दो दिन बाद ये माल यहाँ से बंदरगाह की गोदी में पहुँचा दिया जाएगा। इसी रोज रात को माल कृष्णा जहाज पर लाद दिया जाएगा और इस रात की सुबह को जहाज कलकत्ता की तरफ रवाना हो जाएगा। समुद्री सफर दो दिन में तय होगा। तीसरा दिन तुम्हें कलकत्ता के गोदाम में आएगा, इसके बाद तुम वहाँ से निकल जाना। शाम को नजर चचा ने नदीम को गोदाम की साथ वाली कोठरी में छुपाकर बाहर से ताला लगा दिया। इस कर्शेदार ट्रक पर माल लदवाकर मजदूरों के साथ वहाँ पहुँच गया। भरे हुए खोके गोदाम में एक तरफ लगा दिए गए। जब सारा सामान गोदाम में पहुँच गया तो नजर के रिश्तेदारों ने ट्रक ड्राइवर और मजदूरों को वहाँ से रुखसत कर दिया। फिर नजर की तरफ झुककर राजदारी से बोला, पाकिस्तानी लड़का कहाँ है? नजर ने बंद कोठरी की तरफ इशारा किया। इसका रिश्तेदार बोला, अब से गोदाम में ले आओ, मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ। जिस रात सामान बंदरगाह की गोदी में जाने वाला होगा, इस रोज शाम को आकर मैं इस पाकिस्तानी नौजवान को इसके लिए तैयार किए गए खास खोके में बंद कर दूंगा। ये खास खोका गोदाम में माल के साथ ही पहुंचा दिया गया। नजर का रिश्तेदार इसके घर की तरफ मुड़ गया और नजर ने कोठरी खोलकर नदीम को वहां से निकाला और गोदाम में ले जाकर कहा, इन खोकों में एक खाली खोका भी है, इस खोके में लेकर तुम बहरी जहाज में सफर करोगे। नदीम ने लकड़ी के इस बॉक्स को ऐसे देखा जैसे बिल्ली इस पिंजरे को देखती है जिसमें से बंद किया जा रहा हो। ये खोका लंबाई में 6 फीट और चौड़ाई में 3.5 फीट था। इसके अंदर गुदरीला बिछाकर सरहाना रख दिया गया था, मिट्टी के तेल की एक प्लास्टिक की बोतल, माचिस, बिस्कुटों का डब्बा, पानी से भरा हुआ मशकीजा, कुछ मेवों की थैली भी रख दी गई थी। दो दिन बाद जब रात के पिछले पहर नदीम इस खोके में उतरकर लेट गया तो इसे वो बड़ा आरामदायक लगा। नजर चचा और इसका रिश्तेदार इसके पास ही गोदाम में मौजूद थे, इनके सिवा वहाँ और कोई नहीं था। जहाज की रोलिंग और धिचकों से बचने के लिए नदीम के दाएं बाएं फॉर्म के लंबे तकिए इस तरह फंसा दिए गए कि नदीम को झचके बिना लगे और इसे हिलने जुलने में भी आसानी हो। खोखले की ऊंचाई इतनी रखी गई थी कि नदीम घुटने पर ऊपर उठा सकता था। लकड़ी की दीवारों में मुंह के करीब दाएं बाएं 6-6 गोल सुराख हुआ हवा की आमदरफ्त के लिए रखे हुए थे। नजर चचा बोला, बेटा घबराना बिल्कुल नहीं, समंदर इन दोनों पर सुकून होता है, हिचकोले नहीं लगते, मामूली सी रोलिंग होती है तुम्हें हवा बराबर आती रहेगी और हम तुम्हारे खोके को जहाज में इस तरह रखवाएंगे कि तुम्हारे ऊपर कोई दूसरा खोका ना रखा जाएगा। अब ये खोके को बंद करता हूँ, जरा देखो तुम्हें हवा कितनी आती है। ये कहकर नजर चचा ने खोके के ऊपर लकड़ी का तख्ता रख दिया। खोके के अंदर अंधेरा छा गया। नदीम को यूं महसूस हुआ जैसे इसे कब्र में बंद कर दिया गया है वो लंबे लंबे सांस लेने लगा। ऊपर वाले तख्ते और दाएं बाएं के सुराखों में से ताजा हवा खोके में आ रही थी। नजर ने तख्ता उठा दिया। इसका रिश्तेदार बोला, दम तो नहीं घुटता था ना बेटा? जी नहीं, नदीम ने आहिस्ते से कहा। इसे दम घुटने का एहसास जरूर हुआ था, मगर ये तकलीफ इसे हर हालत में बर्दाश्त करनी थी। इसके सिवा कोई चारा नहीं था। आजादी हासिल करने और नजमी के शहर कलकत्ते पहुंचने के लिए इसे इस जान गसल मरहले से बहरहाल गुजरना था। नजर कहने लगा, तुम्हारे पास जरूरत की हर शेय रख दी गई है। जहाज दूसरे रोज शाम को कलकत्ता पहुंच जाएगा। हमने मारवाड़ी सेठ को तार दे दिया है कि वो सामान जल्दी छुड़ा लिया करे। यकीनन वो परसों शाम ही को सामान छुड़ा कर साथ ले जाएगा और तुम्हें बंदरगाह के गोदाम में नहीं जाना पड़ेगा। नजर चचा ने घड़ी देखी। इसका रिश्तेदार बोला, मेरा ख्याल है अब खोका बंद कर देना चाहिए, क्योंकि माल गोदी तक ले जाने के लिए ट्रक आता ही होगा। फिर नदीम की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, तख्ते में कील इस तरह ठोकी जाएगी कि तुम थोड़ी सी कोशिश करके इसे ऊपर उठा सकोगे। एक हथौड़ी तुम्हारे पास रख दी गई है। नजर चचा ने नदीम के सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, बेटा खुदा तुम्हें बहुत जल्द खैरियत से पाकिस्तान पहुंचाए। मेरी तरफ से अपने माँ बाप और दूसरे पाकिस्तानी दोस्तों को सलाम कहना। हम हमेशा पाकिस्तान की सलामती की दुआएं करते रहेंगे। नदीम ने नजर चचा का हाथ थाम कर चूम लिया। इसकी आवाज जज्बाती हो गई। इसने नजरल और इसके रिश्तेदार का शुक्रिया अदा किया। नजर चचा ने जेब से 200 रुपए इंडियन करेंसी के निकाल कर नदीम को दिए और कहा, ये कलकत्ता में तुम्हारे काम आएंगे, खुदा हाफिज बेटा। खोके के ऊपर तख्ता लगा दिया गया। नदीम अंधेरे में खोके के अंदर खामोश लेटा लंबे लंबे सांस ले रहा था। तख्ते को कीलों से इस तरीके से जोड़ा गया कि वो अंदर से थोड़ी सी जंग लगाने से खुल सकता था। बाहर ट्रक खड़े होने और मजदूरों की आवाज सुनाई दी। इस वक्त गोदाम में से सारा माल ट्रक में रखा जाने लगा। नजर की रिश्तेदार ने नदीम वाले खोके को बड़े एहतियात से दूसरे खोकों के ऊपर रखवाया और ट्रक में बैठकर बंदरगाह की गोदी की तरफ रवाना हो गया। दूसरे दिन 7 बजे कृष्णा जहाज को इंदिमान से रवाना होना था। नदीम चुपचाप खोके के अंदर बिल्कुल सीधा लेटा था। दिल में खुदा से दुआ मांग रहा था कि वो इसे सही सलामत कलकत्ता पहुंचा दे। ट्रक बंदरगाह पर पहुंच गया। नजर के रिश्तेदार ने अपनी निगरानी में सामान जहाज के लोअर डेक में रखवाया। इस बात का इसने खास ख्याल रखा कि नदीम वाला खोका दूसरे खोकों के ऊपर रखा जाए और ऐसा ही हुआ। वो खोके के अंदर अंधेरे में लेटा खुदा को याद करते हुए दिल में कलमे शरीफ को शरीफा वित कर रहा था। दूसरी तरफ अब्दुल मल्लाह भी शबाना को साथ लेकर इसी जहाज में सवार हो चुका था। ये बार बरदार जहाज था और अब्दुल का ताल्लुक चूंकि मर्चेंट नियोमी से था, इसलिए इसे और शबाना को दो अलग अलग केबिन कप्तान ने दे दिए थे। बाकी मल्ला भी डेक पर सवार हो गए थे। दिन के ठीक 7 बजे कृष्णा बाहर बहरी जहाज ने लंगर उठाया और आहिस्ता आहिस्ता बंदरगाह की जेती से दूर हटने लगा। शबाना और नदीम इस हकीकत से बाखबर थे कि वो दोनों एक ही जहाज में सफर कर रहे हैं। नदीम खोके के अंदर लेटा था। जहाज के इंजनों की आवाज से इसने अंदाजा लगा लिया था कि जहाज अपने सफर पर समंदर में रवाना हो गया है। नदीम ने एक लंबा सांस ली और आंखें बंद करके खुदा से दुआ मांगने लगा। जनवरी का महीना था। इन दिनों समंदर पर सुकून होता है। जहाज कृष्णा सुकून से समंदर में सफर कर रहा था। शबाना अपने कैबिन में लेटी लाहौर को याद कर रही थी। इसे सिर्फ एक ही ख्याल परेशान कर रहा था कि कलकत्ता पहुंचने के बाद वो भारत की सरहद पार करके पाकिस्तान कैसे जाएगी। अब्दुल को ये मालूम नहीं था कि शबाना पाकिस्तानी है। اور اسے ڈھاکہ سے اغوا کر کے ہندوستان لایا گیا تھا. شبانہ نے سوچا کہ عبدل ایک نیک دل مسلمان بزرگ ہے, وہ کلکتہ پہنچ کر اسے سب کچھ بتا دے گی, وہ ضرور اس کی مدد کرے گا. شبانہ کلکتہ کے وکیل صاحب کے ہاں دوبارہ نہیں جانا چاہتی تھی, یہ ان کے پولیس کی نظروں میں آ جانے کا اندیشہ تھا. عبدل نے شبانہ سے کہہ رکھا تھا کہ کلکتہ پہنچ کر تم میرے گھر میں اترنا, میں تمہیں اپنی حفاظت میں ڈوبے ہوئے جہاز کی کپتان صاحب کے بنگلے پر پہنچا دوں گا. میں نے ان کا بنگلہ دیکھا ہوا ہے, تازی گنج میں ہے. شبانہ وہاں نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ نیک دل کپتان اب اس دنیا میں نہیں تھا, وہ تو جہاز کے ساتھ ہی سمندر کے نظر ہو گیا تھا, اور وہ اس کی بھانجی بھی نہیں تھی. اس لیے بیوی بچے صاف عبدل سے کہہ دیے گئے کہ یہ لڑکی ہماری شدار نہیں ہے, بہتر یہی ہے کہ میں کلکتہ پہنچ کر عبدل کو ساری بات بتا دوں. یہ ناول دلہن کا فرار کا بقیہ حصہ پارٹ 2 میں سماعت فرمائیں.